समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन। अ वेरी गुड आफ्टरनून शगुन।
अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आकर्षिता एंड टू ऑल आर लिसनर्स। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एज ऑलवेज वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर यू लाइंड अप। वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, एंड ऑल ऑफ दिस over the next 30 minutes. So listeners, turn up the volume. We begin with the headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 सम्मेलन के लिए इटली यात्रा संपन्न। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण रखा।
इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस फॉर यूक्रेन टू टेक प्लेस इन स्विट्जरलैंड टुडे।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए।
In Sikkim, incessant heavy rainfall causes multiple landslides in northern part of the state. More than 1,200 tourists will be stranded.
और ICC T20 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम फ्लोरिडा में अंतिम ग्रुप मैच में भारत का मुकाबला कनाडा से।
And our friends, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national and global level. Today, we will talk about World Elder Abuse Awareness Day.
दिलचस्प बात यह है शगुन कि हर कोई लंबी जिंदगी चाहता है, लेकिन कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। ये विडंबना है कि चाहे ये कितना भी अवांछनीय हो, बुढ़ापा तो आना ही आना है। हम सभी जीवन के दुख और सुख का सामना करने के लिए मजबूर हैं। वृद्धावस्था जीवन पद्धति को पूर्ण करती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी पेश करती हैं।
जी, और जैसे कि आज 15 जून है, सो टुडे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इट इज ऑब्जर्व्ड टुडे एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यू ऑफ एल्डर अब्यूज। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ कोट बाय मार्क ट्वेन। इट गोज लाइक दिस, रिंकल्स शुड मेयरली इंडिकेट वेयर स्माइल्स हैव बीन।
बुजुर्गों के साथ शगुन जो दुर्व्यवहार है वो एक व्यापक मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों वृद्ध लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये शारीरिक, भावनात्मक, यौन और वित्तीय शोषण के साथ साथ उपेक्षा और परित्याग सहित विभिन्न रूप ले सकता है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के परिणाम गंभीर होते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि समय से पहले मौत भी हो सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और अपने लिसनर्स को हम ये भी बताना चाहेंगे कि द थीम जो इस साल की थीम है, जो 2024 की थीम है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की, वो है स्पॉटलाइट ऑन एल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। इमरजेंसीज जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इमरजेंसीज सच एज नेचुरल डिजास्टर्स, पैंडेमिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट ओल्डर पर्सन्स, एग्जास्परेटिंग देयर एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज। Addressing their needs in emergency planning and response, it's very crucial, as older individuals often face mobility issues, chronic health conditions, or even social isolation. These factors can hinder their ability to access aid, evacuate safely, or receive timely medical care and support services. Additionally, the stress and chaos of emergencies can increase the risk of elder abuse, including physical, emotional, financial, or even neglect.
इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज INPEA के अनुरोध पर स्थापित किया गया था, जिसने जून 2006 में इस दिन की स्थापना की थी। WEAAD लोगों के लिए बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के अमानवीय कृत्य के बारे में जानने और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार और पीड़ा का विरोध करने और रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक जागरूकता दिवस है।
एंड आकर्षिता, बिटवीन 2019 एंड 2030 द नंबर ऑफ पर्सन्स एज 60 इयर्स और ओवर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 38% एंड इन नंबर्स इट इज फ्रॉम 1 बिलियन टू 1.4 बिलियन ग्लोबली एंड इट विल बी इवेंचुअली इट कैन आउट नंबर यूथ एंड दिस इंक्रीज विल बी द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट रैपिड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड and recognizing that greater attention needs to be paid to the specific challenges which affect older persons, including in the field of human rights.
शगुन, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों देशों में मौजूद है, फिर भी वैश्विक स्तर पर आमतौर पर इसकी रिपोर्ट कम की जाती है। हालांकि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की सीमा अज्ञात है, लेकिन इसका सामाजिक और नैतिक महत्व स्पष्ट है।
And the approaches to define, detect and address elder abuse, they need to be placed within a cultural context and considered alongside culturally specific risk factors. From a health and social perspective, unless both primary healthcare and social service sectors are well equipped to identify and deal with the problem, elder abuse will continue to be underdiagnosed and overlooked.
ये दिवस इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करता है। सरकारें, समुदाय और व्यक्ति सभी बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसमें इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण और व्यवहार को चुनौती देना और वृद्ध लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना शामिल है।
And friends, this day also highlights the importance of education and training for emergency responders, caregivers and the public. By raising awareness about the specific challenges faced by older persons in emergencies, we can foster a more inclusive and protective environment.
शगुन, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग बुजुर्गों की देखभाल नहीं करना चाहते, खासकर जब वे बीमार हों, क्योंकि उन्हें आमतौर पर बहुत सारी भावनात्मक और शारीरिक समस्याएं होती हैं जिनकी बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं ना कि बचपन और बुढ़ापा दोनों ही एक समान है, हमारे बुजुर्ग भी इस अवस्था में बच्चे ही बन जाते हैं, बच्चों ही की तरह उन्हें देखभाल और खूब प्यार की आवश्यकता होती है।
बिल्कुल सही कहा आकर्षिता आपने। Then we would like to actually urge our listeners also to, and we will also take this to stand against elder abuse and support the victims of this heinous crimes which can you know which can be committed against them.
जी जी शगुन, और साथ मिलकर हम एक ऐसा समाज बनाने में मदद कर सकते हैं जहां वृद्ध लोगों को महत्व दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए और जहां उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए। और आज ही वर्ल्ड विंड डे है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिना हवा के हमारा जीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि आज भी ना जाने ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो कई ग्रहों पर हवा तलाशने के लिए सालों साल शोध करते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। जब हवा अच्छी होती है ना शगुन, तो हमारी तबीयत भी कुछ हरी भरी हो जाती है।
बिल्कुल सच कह रही हैं।
और शुद्ध हवा और सुहाने मौसम के लिए हम दूर दराज पहाड़ों में जाते हैं, वादियों को तलाशते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम अपने शहरों को प्रदूषित हवा से निजात पाना चाहते हैं। तो आइए इस दिन हम ये संकल्प लें कि स्वच्छ, सुंदर और शुद्ध हवा के लिए हम अपने चारों ओर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे और प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे।
एंड आकर्षिता, आई वुड लाइक टू एड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल हियर। लाइफ इज लाइक द विंड, एम्ब्रेस इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप नहीं अनुमान लगा सकते विंड किस तरफ है या क्या है, आपको बस उसकी जो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको एम्ब्रेस करके चलना होता है, जैसे हम लाइफ में भी देखते हैं, अपने जीवन में भी देखते हैं। सो लिसनर्स, दिस डे रेजेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स पावर टू ऑल्टर द ग्लोब। इट इज एन एफर्ट टू प्रमोट द यूज ऑफ विंड एनर्जी एज अ सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। As the world intensifies efforts to combat climate change by reducing carbon emissions, harnessing renewable energy sources becomes very critical. It's really, really important, you know. And wind is actually one of the cleanest and most abundantly available energy sources, which holds immense potential to not only bolster climate change mitigation, but also meet the growing energy demand.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। बिहार में राजभवन में आज से दो दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत हुई। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने आमोत्सव 2024 के नाम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोगों को आम की प्रजातियों के बारे में रूबरू कराने के अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में आम के उत्पादन, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। आम के उत्पादन के मामले में बिहार देश भर में चौथे स्थान पर है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
दो दिवसीय इस आमोत्सव में 1000 से अधिक किसान, निर्यातक, फल उत्पादक विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। बिहार के आम उत्पादन और व्यापार की संभावनाओं और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में आम की प्रजातियां हैं, जिनसे भारत ही नहीं विश्व के लोगों को परिचित कराया जा सकता है।
कि दुनिया भर में जब जाते हैं तो लोग पूछने के बाद बताते हैं कि अल्फोंसो भारत का आम है। क्या हम आने वाले समय में दुनिया भर के लोगों को बताएंगे कि भारत का आम जर्दालू है, भागलपुर का जर्दालू भारत का आम है? क्या ऐसी परिस्थिति हम कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। हमारा विश्वास है, हिम्मत है, हमारे बीच में उद्यमिता है।
बिहार के मैंगो मैन के नाम से विख्यात अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में आम की अलग अलग प्रजातियां हैं जो यहां की मिट्टी और जलवायु से मेल खाती हैं। इसके माध्यम से आय में बढ़ोतरी हो सकती है और इसके लिए किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
हर जिला में कहां क्या समस्या है जिलावार देखना होगा। हर जिले में एक एक सेंटर बनाना होगा। जिस जिले में प्रॉब्लम होगा, खेती ज्यादा हो रहा है, तो उस जिले से किस तरह से उसका जो है समापन हो या विपणन हो, विपणन पर विशेष ध्यान जाएगा। विपणन से जो ज्यादा आम हो जाएगा उसके लिए प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग, उसके लिए प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, से भी आमदनी होगा। और आने वाले समय में मैं कन्फर्म हूँ कि बिहार में आम के माध्यम से किसान में समृद्धता आएगी और बिहार विकसित होगा।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति प्रोफेसर डीआर सिंह ने कहा कि उनके विश्वविद्यालय ने खेती की तकनीक को सामान्य लोगों तक पहुंचाया है। भागलपुर के जर्दालू आम को GI टैग मिलना एक बड़ी उपलब्धि है।
हमारी जो उत्पादकता है बिहार राज्य की, वो राष्ट्रीय उत्पादकता से भी अधिक। हम पूरे देश में चौथे स्थान पे हैं, लेकिन यहाँ से जो आम की इतनी विविधता होने के बावजूद भी कुछ ही मैंगो का एक छोटे स्तर पे व्यापार कर पाते हैं बाहर भीतर। जबकि हमारे विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का विश्वविद्यालय है, पूरे दुनिया का पहला महाविद्यालय था है जहाँ पे हम लोगों ने दो हाईब्रिड निकाली, पूरे वर्ल्ड को दिया, जिसे महमूद बहार और प्रभा शंकर। हमारे विश्वविद्यालय हर वर्ष करीब 2 लाख पौधे किसानों को मुहैया कराते हैं और इस तरह से बिहार में जितने भी प्रजातियां हैं और जो आम के बागान हैं, ये सभी करीब 90% योगदान हमारे विश्वविद्यालय का ही है।
परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
And now listeners, from Bihar, we will take you to Chandigarh as we have an interesting story from there. Press Information Bureau, PIB Chandigarh, organized a media workshop yesterday and aimed to familiarize journalists from Chandigarh and nearby areas with 3 new legislations, Bhartiya Nyay Samhita, BNS, Bhartiya Nagarik Suraksha Samhita, BNSS, and Bhartiya Sakshay Adhiniyam, BSA, which are set to come into force from July 1, 2024. We have a report.
Kavaldeep Kaur, Senior Superintendent of Police Chandigarh, was a chief guest and a special speaker at the gathering. She emphasized the importance of these new laws. With these new laws, the system can now move more efficiently towards ensuring justice. SSP elaborated on the innovative aspect of the new legal framework, particularly the use of digital technology to enhance the justice delivery system. Under the new laws, time-stamped evidence will be stored and made available to courts in a timely manner. This will significantly improve conviction rates across the country, she stated. She said that all investigating officers in Chandigarh Police have received training on the 3 new criminal laws, with regular reviews being conducted to ensure their effective implementation. She said, "We are leaving no stone unturned in making sure these laws are implemented efficiently and effectively." Deepak Bajaj, an advocate at the Punjab and Haryana High Court, also spoke on this topic, highlighting the efficiency and modernization these laws bring. The BNS, BNSS and BSA represent a comprehensive overhaul of our legal system aimed at reducing delays and ensuring timely justice. He said, "These laws address the inefficiencies of the past and provide a robust framework for the future." Akanksha Saxena for Parikrama from Chandigarh.
और अब बारी है जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डिफेंस न्यूज कैप्सूल में रक्षा जगत का हाल जानने की। ब्रॉडकास्टिंग अधिकारी आनंद सौरभ द्वारा प्रस्तुत आज के रिपोर्ट में सुनिए पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के विशेष साक्षात्कार के प्रमुख अंश, जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में आर्म्ड फोर्सेज और डिफेंस सेक्टर की दिशा के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय दी है।
श्री राजनाथ सिंह ने इस हफ्ते 13 जून को दूसरे कार्यकाल के लिए रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए अपने विजन को रेखांकित किया और कहा कि पहले से अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र की स्थापना के लिए नए सिरे से जोर देने के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही आर्म्ड फोर्सेज के मॉडर्नाइजेशन और सेवारत तथा सेवानिवृत्त दोनों सैनिकों के कल्याण पर मुख्य ध्यान बना रहेगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आने वाले समय में रक्षा निर्यात को बढ़ाना होगा और उसे 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर ले जाना होगा। आने वाले दिनों में रक्षा मंत्रालय की क्या दिशा होगी, इसे समझने के लिए हमने पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया रिटायर्ड से बात की। सर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की कमान संभाली है, आप आर्म्ड फोर्सेज और डिफेंस सेक्टर में क्या दिशा देखते हैं वो रोल आने वाले दिनों में?
यह भारत का सौभाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और श्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। इस गवर्नमेंट के अंदर आगे आने वाले 5 सालों में मैं देखता हूं कि जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है रिफॉर्म्स पे, मॉडर्नाइजेशन पे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे और आत्मनिर्भरता पर, इस सब में आने वाले 5 सालों में मैं और तेजी देखता हूं। बहुत जल्द ही, जहां तक इंटीग्रेशन का सवाल है, कुछ बड़े निर्णय और कुछ बड़े कदम सामने आएंगे और मॉडर्नाइजेशन की जो पेस है, जो ट्रेजेक्टरी है, वो और भी बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम बढ़ाए गए हैं एंड जो डिफेंस इंडस्ट्री में जो बदलाव लाए गए हैं, उसका एक्चुअल रिजल्ट अब और दिखना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स में तो हमने रिसेंटली देखा है कि कितना बढ़ाव शुरू हो गया है, एक्सपोर्ट्स की तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाएगा एंड तीनों सेनाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए जो डिफेंस इंडस्ट्री में जो सेटअप होना चाहिए मेक इन इंडिया के अंदर, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स पर जोर दिया जा रहा है, स्पेस सेक्टर्स में जितने रिफॉर्म्स आए हैं उसका इम्पैक्ट जो डिफेंस सर्विसेज के लिए होगा, डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स के लिए और नई टेक्नोलॉजीज पे जो फोकस होगा, इस सबको मैं देख रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसमें हर एक क्षेत्र में बहुत सारी अचीवमेंट सामने आएंगी।
अगर एयरफोर्स की बात करें तो आपके अनुसार क्या प्रायोरिटीज रहेंगी
आने वाले 5 सालों में? जहां तक भारतीय वायुसेना का सवाल है एंड उनकी टॉप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, मेरे हिसाब से जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन में कदम उठे हुए हैं उसको और तेज करना चाहिए। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में जो अचीवमेंट्स हुई हैं, जैसे एलसीए के ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस हो गए 83 के और 97 के, और उसको कैसे तेज किया जाए। जो नए प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं इंडिजिनस, चाहे वो 5th जनरेशन एमका हो, चाहे एलसीए मार्क 2 हो, और जो ट्रांसपोर्ट साइड में C-295 की प्रोडक्शन है उसका टाइम पे निकलना, आगे आने वाले समय में दूसरी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे हेलीकॉप्टर्स की है, चाहे ट्रांसपोर्ट की है, चाहे फाइटर्स की है, उसकी प्लानिंग करना और हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री को उसके ऑर्डर्स देना, ये सब प्रायोरिटी में रहेंगे एज फार एज कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज कंसर्न। इसी के साथ मैं देख रहा हूं कि 5 साल में वेपन्स की तरफ, सेंसर्स की तरफ और नई टेक्नोलॉजीज की तरफ बहुत फोकस रहेगा वायुसेना का, क्योंकि वेपन्स एक ऐसा एरिया है जहां पे काफी स्कोप है यहाँ पे प्रोडक्शन का एंड नई वेपन्स का डेवलपमेंट का, नेक्स्ट स्टेज वेपन्स का। जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो तो ऑलरेडी डेवलप हो रही है, हमें सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और वो काम भी इसी 5 साल में होगा। जो नए नए एरियाज आए हैं, चाहे वो ड्रोन्स के क्षेत्र में हो, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में हो, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की तरफ जो कदम बढ़ाए गए हैं, इनिशियल स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं, उसमें मैं काफी अचीवमेंट्स देखता हूं इस आने वाले समय में, जहां तक डीएनडी का सवाल है, एंड इसमें से कई सिस्टम्स प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। आई थिंक एक और बड़ा फोकस वायुसेना का रहेगा, जहां तक नेटवर्किंग का सवाल है, जहां तक न्यू टेक्नोलॉजीज का सवाल है, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो, चाहे सिक्योर नेटवर्क्स हो, और स्पेस बेस्ड एसेट्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, कैसे ज्यादा इंटीग्रेट किया जाए, 24/7 विजिबिलिटी कैसे अचीव किया जाए, मिनिमम खर्चे पे मैक्सिमम कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, इन सब में बहुत बड़ा फोकस रहेगा। तो साइबर एंड स्पेस में फोकस बढ़ेगा एंड उसमें भी हम रिजल्ट्स देखेंगे।
और एक आखिरी सवाल कि किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स किस प्रकार प्रिपेयर्ड है?
जहां तक भारतीय वायुसेना की तैयारी का सवाल है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना आज एक बहुत ही मॉडर्नाइज्ड, केपेबल एंड मैच्योर्ड वायुसेना है और हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड है। हर तरह की, चाहे वो वॉर टाइम सिचुएशन हो या शॉर्ट ऑफ वॉर हो, नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो, पीस टाइम रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिजास्टर रिलीफ रिक्वायरमेंट्स के लिए, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए, नेशनल रिक्वायरमेंट के लिए भारतीय वायुसेना बहुत सक्षम है एंड हर क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पूरी तरह से तैयार है।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरव।
And now, friends, we'll move on and we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember freedom fighter Sirbandhan. He was in the service of the English East India Company Army, but left it during the First War of Independence in 1857 and also motivated his fellow sepoys to leave their service and take part in the struggle for freedom from the oppressive foreign rule.
He fought the company on several occasions and was finally caught in an encounter, charged with desertion and mutiny against the British authorities. Sirbandhan was sentenced to transportation for life with hard labour and irons on the 15th of August 1857. He died there in detention on the 15th of June 1858. AIR News salutes the great nationalist.
June 15th is also the death anniversary of Hari Lal Shah. He participated in the Dharasana Salt Satyagraha in May 1930. When Gandhiji decided to go for the Dharasana Salt Satyagraha, he wrote to Viceroy Irwin and told him about his plan. To prevent Gandhiji from acting, he was arrested on the 4th of May 1930 and detained near Pune. The Dharasana Satyagraha went ahead as planned by Gandhiji, with Abbas Tayyabji leading the march, with Kasturba Gandhi at his side.
Both were arrested before reaching Dharasana and sentenced to 3 months of imprisonment. After their arrests, the Satyagrahis, including Harilal Shah, continued the march under the leadership of Sarojini Naidu, who warned them,
"You must not use any violence under any circumstance. You will be beaten, but you must not resist. You must not even raise a hand to ward off blows."
As apprehended, the armed forces began clubbing the Satyagrahis with steel-tipped lathis in an incident on the 22nd of May 1930, and many Satyagrahis, of whom one was a badly injured Harilal Shah. Later, Harilal Shah succumbed to his injuries on the 15th of June 1930. AIR News salutes the great nationalist.
We also remember Gandhian freedom fighter Kushal Konwar. On the 10th of October 1942, hidden in the thick fog of early morning, some people removed a few sleepers from the railway line near Sarupathar in Golaghat district. A military train passing by derailed and many British and American soldiers lost their lives.
Accusing Kushal Konwar of being the chief conspirator of the train sabotage, the British police arrested him. At dawn on the 15th of June 1943, at 4:30 a.m., Kushal Kumar was hanged at Jorhat Jail.
श्रोताओं तो अब चलते हैं खेल के मैदान में। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी रेनबो और अन्य चैनलों पर 7:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
In the Euro Cup Football Championship, Hungary will take on Switzerland in Group A in Cologne this evening. The match is scheduled to begin at 6:30 p.m. Indian Standard Time. In Group B, Spain will lock horns with Croatia in Berlin at 9:30 p.m. In another Group B match, Italy will face off against Albania in Dortmund at 12:30 a.m.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। इस क्रम में सबसे पहले याद करेंगे अपने समय के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन टागर को। उन्होंने ध्रुपद शैली के गायन को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है। फरीदुद्दीन का जन्म 15 जून 1932 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, जहां उनके पिता उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के दरबार में संगीतज्ञ थे। फरीदुद्दीन ने संगीत की शिक्षा अपने पिता उस्ताद जियाउद्दीन खान साहब से ली थी। उस्ताद जिया फरीदुद्दीन टागर उस परिवार से हैं जिसने पीढ़ियों तक ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें तानसेन सम्मान दिया गया। 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से वे सम्मानित किए गए।
So friends, today we are also remembering American jazz singer, sometimes referred to as the First Lady of Song, Queen of Jazz, and Lady Ella Jane Fitzgerald, who left us on 15 June in the year 1996. Her rendition of the nursery rhyme "A Tisket, a Tosket" help her to get risen to the national fame, and we are listening to this particular rhyme.
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy. On the way, I dropped it.
हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया की आज जयंती है। 40वें और 50वें दशक में इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया। अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। वो पास रहें या दूर रहें, दिली नादां तुझे हुआ क्या है जैसे गीत सुनकर आज भी जहन में सुरैया की तस्वीर उभर आती है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
वो पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहें या दूर रहें।
And listeners, today it's the birthday of an American singer, songwriter, musician and actor, Waylon Jennings. He is considered one of the pioneers of the outlaw movement in country music. So let's listen to this beautiful track by him, I've Always Been Crazy.
I've always been crazy in the trouble that it's put me through. When dust is the thing that
अन्ना हजारे का आज जन्मदिन है। वे गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले एक समाज सेवक हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी की जगह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आम आदमी को जोड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन बापट बाबूराव हजारे है तथा प्यार से लोग इन्हें अन्ना हजारे कहते हैं। अन्ना हजारे की समाज सेवा और समाज कल्याण के कार्य को देखते हुए तथा प्रतिबद्ध और ईमानदार प्रयास के लिए सरकार ने उन्हें समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनमें 1990 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण भी शामिल है। अमेरिका के केयर इंटरनेशनल सियोल ने भी उन्हें सम्मानित किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का, और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। और इसी के साथ ही
नमस्कार।